اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیج نمبر 184 پہ سے شروع کریں گے. یہ جو آگے چیپٹر ہے یہ اس کے حوالے سے ملائکہ کے گروہ. اب تک آپ نے اور ہم نے صرف ملائکہ کے بارے میں اتنا سنا کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ نوری مخلوق ہے، یہ جی ہمارے ایک فرشتہ کاندھے پہ بیٹھا، دائیں پہ ایک بائیں پہ، تو وہ لکھ رہا ہے، یا یہ کہ جی وہ موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں ساتھ لے جائے گا، ہماری جان نکال لے گا. اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں ملائکہ کے بارے میں کوئی تعارف نہیں ہے. بہت ہو تو اتنا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی لے کر. یعنی یہ ہے وہ جنرل سا ایک نالج جو ہمارے ذہنوں میں ملائکہ کے بارے میں بٹھایا گیا. اب آپ غور کریں کہ حضور مرشد کریم نے اس کتاب میں اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ کتاب ہے لوح قلم، اس میں حضور قلندر باب اولیاء نے یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں. بیشتر اس کے کہ میں یہ شروع کروں یہ چیپٹر پہ پڑھنا، میں ذرا آپ کی توجہ دلاؤں گا پیج نمبر ہے 187 پہ. کیا پیج نمبر 187 پہ؟ یہ دیکھیں دائرے بنے ہوئے ہیں، دائرے 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 دائرے، ٹھیک ہو گیا. اب ان دائروں کو اگر آپ وہ مثال لیں کہ جی تالاب کے دائرے، تالاب یعنی اللہ کی صفات کے دائرے، تو بھی ٹھیک ہے. ویسے اس میں کیا کچھ دکھایا گیا ذرا غور کریں، اوپر سے شروع کریں. آخری دائرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، نہیں یہ اس کے آگے ایک زوئے لکھا ہوا ہے، زوئیں، اور اس سے نیچے لکھا ہوا ہے میم. میم کیا چیز ہے اور زوئے کیا چیز ہے، پہلے نوٹ پڑھ لیں نیچے کہ زوئے سے مراد اس کا ظہور ہے اور میم سے مراد مثال ہے، یعنی مثال جو ظہور کی طرح ہے، یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالی کا ایک مثالی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں ذات ہے، تو وہ باہر سارا سفید ایسا گویا اللہ ہے، اور یہ ایک لائن جو ہے یہ گویا ظہور ہو گیا اللہ کا یا تجلیات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یا اس کی صفات ہو گئی. اب یہاں پہ چونکہ کچھ اور بتانا مقصود ہے تو وہ لہذا بتایا کہ پہلا ملائے اعلیٰ، یہ میم سے مراد ہے یہاں پہ ملائے اعلیٰ کا ایک دائرہ، ملائے اعلیٰ کے مثال ہے، اس کا جسم مثالی ہے، اور دوسرا ملائے اعلیٰ کا ظہور ہو گیا. پھر اس سے نیچے یعنی اور اندر ملائکہ سماوی ہیں، اور پھر ملائکہ سماوی بھی اسی طرح اس کی مثال ہے اور اس کا ظہور ہے. پھر اس سے نیچے ملائکہ روحانی ہیں، اور پھر اس سے اندر کے دائرے میں ملائکہ عنصری ہیں، پھر ملائکہ عنصری کا بھی اسی طرح مثال اور ظہور. پھر اس سے بھی اندر جنات ہیں، اور جنات کا بھی اسی طرح مثال ہے اور ان کا ظہور ہے، اور آخر میں انسان ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ. یہاں پہ اسی طرح انسان کا بھی ایک مثال ہے اور ایک ظہور ہے، یہ ایک دائرہ مسنگ سمجھیں. اور پھر اس سے اندر، اس سے اندر عنصری مخلوق، یعنی آخری دائرہ جو ہے یہ عنصری مخلوق ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محیط ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھوٹا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. یا دوسرے معنوں میں جو جو لطافت کم ہوتی جا رہی ہے، ڈینسٹی بڑھتی جا رہی ہے، اب یہ کون سی ڈینسٹی، حتیٰ کہ وہ عنصری مخلوق یعنی کہ ہمارا جسم مثالی جو ہے اس کے نیچے، مثالیت سے نیچے کا زون جو ہے وہ ظہور کا ہے، جسم کا ہے، تو عنصریت یہاں پہ داخل ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ملائے اعلیٰ ہیں، ملائکہ سماوی ہیں، ملائکہ روحانی ہیں اور ملائکہ انصری ہیں، چار قسم کے ملائکہ گویا ان بٹوین اللہ اور جنات ہیں، اور پھر جنات اور انسان کے مابین، انسان اور اللہ کے درمیان جنات ہیں، ملائکہ انصری ہیں، ملائکہ روحانی ہیں، ملائکہ سماوی ہیں اور ملائکہ اعلیٰ ہیں. غور کریں، یعنی اس پیج نمبر 187 کو دیکھنے کے، یہ اس کو اتنی توجہ سے دیکھیں بھی اور ذہن نشین کریں، یعنی اسے ذہن میں اتاریں، اس طرح سے کلیئر ہوتا جائے گا کہ ہمیں اب مقامات کا اندازہ ہو کہ انصری مخلوق جو ہے یہ سب سے محدود دائرہ ہے. انصری مخلوق، انسان جب عناصر سے بن جاتا ہے تو اس کا ظہور ہو گیا تو اس کو انصری مخلوق کے کھاتے میں ڈال دیا، جب انسان مثال میں ہے تو وہ اس سے اوپر ہے، کس کے؟ انصری مخلوق سے اوپر ہے. پھر اس سے اوپر جنات کا ظہور ہے، اس سے اوپر جنات کی مثال ہے، اس سے اوپر ملائکہ انصری کا ظہور ہے، پھر اس سے اوپر ملائکہ انصری کی مثال ہے، پھر اس سے اوپر، دیکھیں تھوڑا سا گیپ دے کے، پھر ملائکہ روحانی. تو یہ چار قسم کے ملائکہ کے گروہ ہیں، چار گروہ. پھر ملائکہ اعلیٰ میں بھی فرشتوں کے گروہ ہیں، ان کے چار کے نام جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. تو وہ گروہ ملائکہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ جو نیچے ملائکہ ہیں، سماوی، روحانی اور انصری، ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں. اب یہ ہیں کیا؟ اب ان کی ایگزیکٹ سائنس ہم پڑھنے لگے. تو واپس آ جائیے جی پیج 184 پہ. انسان یا کائنات، یہ دو جسموں سے مرکب ہے. ایک جسم روشنی کا ہے اور دوسرا جسم مٹیریل باڈی ہے. یعنی انسان یا کائنات، غور کریں، انسان یا کائنات، یعنی کائنات پوری لیں یا انسان کو لیں، یہ انسان کے لیے مائکرو کازم کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، چھوٹی کائنات، مائکرو کازم. ویسے کاسموس جو ہے وہ کائنات کو کہتے ہیں، کائناتی نظام کو. تو اس طرح سے یہ تعین کر لیں کہ یہ دو جسموں سے مرکب ہے، انسان ہو یا کائنات، اس کی دو تہیں ہیں، ایک اس کا روشنی کا جسم اور دوسرا مٹیریل باڈی، یعنی مادی جسم. یہ مادی جسم جو ہے یہ مادی آنکھ سے نظر آتا ہے، اور اگر روشنی کا جسم، اب اس کا کیا فنکشن ہے کہ وہ مادی جسم کو اطلاعات فراہم نہ کرے، یعنی مادی روشنیوں کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو مادی جسم بیکار اور عضو معطل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عضو معطل، یعنی کہ ایسا عضو بن کے رہ جاتا ہے جو تعطل کا شکار ہو، جس میں کوئی کام نہ کرے. جب تک روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے، مادی جسم متحرک اور فعال رہتا ہے. فعال کا مطلب فیل کام، یعنی فعال رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. متحرک یعنی اس میں تحریکات پیدا ہوتی رہتی ہیں. جب روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات دینا بند کر دیتا ہے تو مادی جسم پہ موت وارد ہو جاتی ہے. اب یہ جو اطلاعات کا منقطع ہونا ہے یا اطلاعات دینا بند کیا جانا ہے، یہ دو قسم کا ہے. ایک یہ کہ یہ وقتی طور پہ بند ہوتا ہے، جیسے نیند میں یا جیسے بے ہوشی میں یا جیسے کوما میں، اور ایک ہوتا ہے موت کی طرح، یعنی کہ وہ پرماننٹلی ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے. اطلاعات کی فراہمی پرماننٹلی بند ہو جائے تو ہم اسے موت کہتے ہیں. یعنی مادی جسم کو اطلاعات کی فراہمی مستقل طور پہ بند ہو جائے तो हम इसको मौत कहते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो इतने दर्जे बताए जा रहे हैं, तो ये रोशनी के जिस्म को भी तो कहीं से इत्तलात मिल रही है ना, वो मिलती रहती है। आगे रोशनी का जिस्म जो है, ये मादी जिस्म को इत्तलात देना बंद कर देता है। जब रोशनी का जिस्म मादी जिस्म को इत्तलात नहीं देता, तो जिस्म के अंदर वो अनासर जिनसे नक्शो निगार बनते हैं बेकार हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि जिंदगी में जितने तकाजे, एहसासात और जज्बात हैं, वो उसी वक्त तक मुतहरिक हैं जब तक रोशनी का जिस्म मादी जिस्म को इत्तलात फराहम करता रहता है। ये रोशनी के जिस्म के पहले आपने क्या क्या नाम पढ़े हैं, कहीं उसको नस्मा कहा गया है, कहीं उसको जिस्म मिसाली कहा गया है, कहा गया ना। यहाँ पे वही बात, लेकिन सिर्फ चूंकि बात समझाने कुछ और है, तो इसलिए इसे रोशनी का जिस्म कहा जा रहा है। अब आगे आ जाती है बात, कायनात की चार जहतें या चार सिमतें हैं, चार जहतें या चार सिमतें हैं, इन्हीं सिमतों को बोध कहा है, इन्हीं सिमतों को उबाद कहा गया, इन्हीं को डायमेंशंस कहते हैं। तो कायनात जो है, ये चार सिमतों, चार डायमेंशन या चार जहतों पे मुश्तमिल है। अब ये चार जहतें क्या हैं? एक जहत है मैटर, दूसरी जहत रोशनी है, तीसरी जहत नूर है, और चौथी जहत अल्लाह का जहन है। अब मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि आप इसको दोबारा गौर से पढ़ें, कि ये चार जहतें हम पढ़कर आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे कि ये चार जहतों के चार नाम और भी बताए गए हैं। कहीं इन्हें नहरें कहा गया, कहीं इनको आलमीन कहा गया, आलम लाहूत और आलम जबरूत और ये आलम मलकूत और आलम नासूत। ये वही चार जहते हैं जिनको मुख्तलिफ नामों से बताया जाता रहा है और बताया जाता रहेगा। ये वो सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि सूफिया कराम ने बात को समझाने के लिए आपस में इवॉल्व की थी, बना ली थी। अब उस टर्मिनोलॉजी की पहली दफा किसी ने इस्त्री की, हमें खोल के बता दिया कि भाई असल में ये कहा जा रहा है, और तो सारी बातों का खुलासा एक ही निकल रहा है कि ये चार जहते हैं, फिर रूह के तीन दर्जे हैं और ये दो रुख हैं। तो गोया एक अल्लाह की जात है, फिर आगे तखलीक के दो रुख हैं, आगे उसके तीन दर्जे हैं, और फिर उसकी चार जहते हैं, पांच हवास हैं, छह शऊर के तनज़लात कह लें, और सात जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल हैं। ये है सारा निज़ाम एक से लेके सात तक। इसी को कुरान ने सबे मिनल मिसानी कहा है। और हम एक एक चीज को हजूर कलंदर बाबा वाली और हजूर मुर्शिद करीम के वाजे करने के बाद समझने की कोशिश में लग गए हैं, ये हमारी सआदत है। तो ये जो चार सिमतें, चार जहतें, इसमें एक मैटर है, दूसरी रोशनी है, तीसरी नूर है, चौथी अल्लाह का जहन है। गोया यही अल्लाह का जहन, जब हमें उसकी इत्तला मिलती है तो उसे वहमा कहते हैं। तीसरी जहत नूर है, नूर जो है वो गोया इत्तला है लेकिन ख्याल की सूरत में। दूसरी जहत जिसको रोशनी कहा गया, वो असल में तसव्वुरात हैं, तसव्वुर जो हमें इत्तलात की सूरत में मिल रहे हैं। फिर आखिर में जो मैटर है, ये क्या दे रहा है हमें, हमें महसूस होता है तो एहसासात देता है, तो ये इसलिए मैटर जो है ये एहसास से रिलेटेड है। तो ये चार जहते हो गई। अब जरा अगले चार लफ्ज मजीद भी सुन लें। अल्लाह के जहन को इल्म वाजिब कहते हैं, ठीक है, अल्लाह के जहन को इल्म वाजिब कहते हैं। अब इंसान के इल्म की मेराज ये है कि वो इल्म वाजिब यानी हिजाबे महमूद को देख लेता है। अल्लाह के जहन को इल्म वाजिब कहते हैं और अल्लाह ही ने इंसान के जहन को ऐसा बनाया कि अगर वो अपनी मेराज पे पहुंच जाए, यानी अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, एपेक्स, एपेक्स कहते हैं इसको, इंतहा दर्जे पे, या अपने ऑप्टिमम लेवल यानी अपने आखिरी सतह पे काम कर रहा हो, पूरी तरह काम करे, तो उसकी रसाई देखें कि वो क्या देखता है, इल्मे वाजिब को देख लेता है। और इल्मे वाजिब क्या हुआ? अल्लाह का जहन हुआ। अब इल्मे वाजिब से आगे क्या है? जाहिर है अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की जात है। तो हिजाब महमूद, यहां पे बात सिर्फ अल्लाह के जहन तक की गई है। हिजाब महमूद से क्या मुराद है? ये अर्श आजम की इंतहा है। अर्श आजम कंट्रोलिंग रूम, जहां से अल्लाह कंट्रोल कर रहा है सारा, ये उसकी भी इंतहा का नाम हिजाब महमूद है। दरमियान में जब हम अर्श कहते हैं तो हमारे सामने जमीन, सात आसमान, फिर अर्श, फिर सिदरतुल मिंतहा और बैतुल मामूर होता है। यानी जब हम अर्श कहते हैं तो ये अर्श के साथ, जरा गौर करें अर्श का दायरा कहां तक फैला हुआ है, यानी जमीन से लेकर सिदरतुल मिंतहा तक, कि जमीन है, सात आसमान है, जिन्हें सबे समावात का है कुरान में, फिर अर्श है, सबे समावात से ऊपर वो कंट्रोल रूम है जहां पे सारा निजाम कंट्रोल होता है, फिर उससे ऊपर बैतुल मामूर है और फिर सिदरतुल मिंतहा है। तो सिदरतुल मिंतहा और बैतुल मामूर से आगे के मुकामात हिजाब अजमत, हिजाब किबरिया और हिजाब महमूद हैं, यानी ये उससे आगे के दर्जे हैं। अब अल्लाह के तकवीनी निजाम में बड़ी हद तक मलाए आला का अमल दखल है। ये मुकामात या जहतें दिखाकर हजूर फरमा रहे हैं, हजूर मुर्शिद करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के तकवीनी निजाम में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स है, उसमें मलाए आला का बड़ा अमल दखल है। लेकिन लेकिन ये लफ्ज लेकिन यानी उनकी हदें बताने लगे कि मलाए आला की परवाज सिदरतुल मिंतहा से आगे नहीं है। क्या बताया? कि हिजाब महमूद किसे कहते हैं? अल्लाह के जहन को। हिजाब महमूद अल्लाह के इल्मे वाजिब, उससे आगे नहीं है, यानी वो अल्लाह की सिफात और अल्लाह की जात के बारे में इतना नहीं जानते, ये उनकी हद है। यानी इंसान की परवाज मलाए आला से बहुत आगे है, साफ लिखा। अब सिदरतुल मिंतहा और बैतुल मामूर की हद में रहने वाले और परवाज करने वाले फरिश्ते जिन तबकों पर मुश्तमिल हैं, ये तबके कहलाएंगे, उनमें एक ग्रोह अल्लाह के सामने हमेशा ये तस्बीह और तहलील में मशगूल रहता है। अब तस्बीह कहते हैं काम की बजावरी को, तहलील का लुगवी मतलब बनता है मामलात को हल करना, काम की बजावरी और मामलात का हल करना। ये हमने इसे तस्बीह और तहलील कह लिया कि वो जनाब एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी तस्बीहां हाथ में लेके तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कर रहे हैं, कोई फरिश्ता या रहमान या रहमान या रहमान कर रहा है, तो कोई फरिश्ता जो है वो या रहीम हो या रहीम हो या रहीम हो, कोई या हय्यो या कय्यूम बोल रहा है। अरे नहीं भाई, ये तस्बीह और तहलील का असल मतलब अर्ज कर दिया। ये फरिश्तों का लामितनाही सिलसिला है जो किसी भी तरह शुमार में नहीं आता। ये ग्रोह रुकू और सुजूद में हमा वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहता है। ये रुकू और सुजूद क्या है? जैसे अल्लाह कहे वैसे करना रुकू और सुजूद है। जैसे अल्लाह कहे या चाहे वैसा करना असल में रुकू और सुजूद है। हमने एक रिचुअल का नाम रुकू और एक का नाम सुजूद रखा हुआ है। अगर देखे ना, मैंने कमर को झुकाया और जमीन के साथ पैरेलल करके 90 डिग्री पे ले आया, तो इससे क्या हुआ, मेरे अंदर क्या कैफियत थी, असल में बातनी कैफियत जो है उसका एक अमली इजहार किया मैंने कि जी मैं सबमिट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ और जिस तरह आप कहेंगे वैसे करूँगा। और फिर करते क्या है कि सजदे में चले जाते हैं, यानी टोटल सरेंडर कर देते हैं। तो ये इसका रुकू सजूद का तस्बीह तहलील का भी आ गया कि किस तरह से ये बताया गया कि ये फरिश्ते कैसे रुकू सजूद करते हैं। अब दूसरा ग्रोह जो है, एक क्या कर रहा है, तस्बीह तहलील कर रहा है, दूसरा ग्रोह अल्लाह ताला के अहकामात आलमीन तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला के अहकामात आलमीन तक पहुंचाता है। और तीसरा ग्रोह उन फरिश्तों का है जो अल्लाह ताला के अहकामात को आलम अमर के लिए जहन में महफूज रखता है। अब यहां से मैं आपको कहूं कि भाई फरिश्तों की साख्त बताई जा रही, क्या साख्त बताई जा रही है, अहकामात को आलम अमर के लिए जहन में रखता है, यानी इल्म वाजिब के बाद नीचे है ना आलम अमर, तो इल्म वाजिब जो है वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, वो जो मसाइल नीचे से ऊपर को जा रहे हैं उनको रिजॉल्व करके वो कामों को पूरा करवाने के लिए ये गोया क्या करता है, जहन में महफूज रखता है। अब हमने हाफिज का तर्जमा कर दिया मुहाफिज, हालांकि जहन में महफूज रखना यानी के याददाश्त, ये गोया याददाश्त के खाने हैं। अब आगे देखें, मलाइका मुकर्रबीन या मलाइआला, ये जो सबसे ऊपर के मलाइका हैं इन्हीं को मलाइका मुकर्रबीन भी कहते हैं। इनके छह पर होते हैं, मलाइका समावी के आगे चार पर होते हैं, मलाइका रूहानी के दो पर होते हैं, मलाइका अंसरी के भी दो ही होते हैं, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा फर्क है उसमें, वो साइज में। तो वो आप ये देखिए कि ये क्या क्या हैं, वो पर इन परों को भी बताने लगे हैं कि ये इनके जो पर हैं उससे क्या मुराद है। मलाइका मुकर्रबीन या मलाए आला के छह पर होते हैं और उनको आलम नूर की फिरासत हासिल होती है। आलम नूर की फिरासत, आलम नूर को जानते हैं, समझते हैं। और आलम नूर से मुराद क्या है, आलम नूर से मुराद अल्लाह ताला के वो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला अर्श से सादर फरमाते हैं। आलम नूर के फरिश्तों या मलाइका मुकर्रबीन के पैगामात मलाइका समावी समझते हैं और मलाइका समावी के पैगामात मलाइका रूहानी तक पहुंचते हैं और मलाइका रूहानी के पैगामात मलाइका अंसरी समझते हैं। ये चार कैटेगरीज हो गई, मलाइआला इनको आलम नूर की फिरासत हासिल है और आलम नूर से मुराद साफ लिखा है कि वो अहकामात जो अर्श से सादर होते हैं। तो आलम नूर के फरिश्तों या मलाइका मुकर्रबीन के पैगामात, ये फरिश्ते जो हैं ये बराह रास्त इंसान को नहीं कर रहे फीड, बल्कि मलाइआला मलाइका समावी को इतला देते हैं। आगे वो मलाइका समावी जो हैं वो मलाइका रूहानी को बताते हैं, वो फिर रूहानी जो हैं वो मलाइका अंसरी को इतला देते हैं, वो आगे फिर जिन्नात और इंसान और अंसरी मखलूक को इतलात फराहम करते हैं। साफ लिखा है कि अहकामात दर्जा बा दर्जा चलते हैं। अगले लफ्ज में मलाइका समावी के पैगामात, वहां पे अहकामात के पैगामात बन गए और फिर मलाइका रूहानी के पैगामात, ठीक है जी, ये पैगामात हैं जो अब फरिश्तों का काम क्या हुआ कि ये अल्लाह के अहकामात को पैगामात की सूरत में मखलूकात तक पहुंचाते हैं। ये इनका असल रोल, इनका रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉस्मोस, पूरा तख्लीकी निज़ाम चलाने में इनका रोल। अब पहले दर्जे में मलाए आला जो हैं ये मलाइका मुकर्रबीन हैं, दूसरे दर्जे में मलाइका समावी हैं, फिर तीसरे दर्जे में मलाइका रूहानी हैं, और चौथे दर्जे में अदना फरिश्ते हैं। अदना फरिश्तों को अनसरियून का कहते हैं, अनसर से। अनसरी फरिश्ते उन अहकामात की तामील करते हैं जो उन्हें मलाइका रूहानी से मिलते हैं, और मलाइका रूहानी उन अहकामात की तामील करते हैं जो उन्हें मलाइका समावी से मिलते हैं, और मलाइका समावी उन अहकामात की तामील करते हैं जो उन्हें मलाए आला से मिलते हैं, और मलाए आला पर अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात सादर होते हैं। अंसरी फरिश्ते ज़मीन के हर हिस्से में फैले हुए हैं, और यही फरिश्ते दुनियाओं में बसने वाली मखलूक को इंस्पायर करते हैं। लफ्ज़ देखें इंग्लिश का, इंस्पायर करना, यानी ब्राह रास्त कोई कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है, ये सारा निज़ाम इंस्पिरेशन पे चल रहा है। एक नशिस्त में हजूर कलंदर बाब औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया कि इंसान के साथ हम वक्त 20,000 फरिश्ते लगे रहते हैं। मेरा ख्याल है यहीं रुक जाते हैं जी, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये जो है आज हमने ये पढ़ा कि ग्रोहे मलाइका जो है उसमें चार कैटेगरीज हैं फरिश्तों की, और ये जो पेज 187 पे डायग्राम है इसको अगर आप बहुत तवज्जो से कुछ देर देखेंगे और साथ में ये फरिश्तों की तरतीब को याद कर लेंगे तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया तो आपका जी कि आप बहुत नवाजिश, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम।